शांति। तो हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी उपस्थित हैं। पुनः पुनः एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं और इसलिए आपको ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। बाल्यकाल से ही मम्मा बाबा की पालना प्राप्त करने का, क्योंकि मम्मा बाबा मुंबई जाया करते थे, तो मम्मा बाबा से न सिर्फ पालना ली, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा की गोद में ही आपका अलौकिक जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ, फिर तो अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ने लगे और अपनी लौकिक पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही। और फिर 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए जनवरी में, और आपने अपनी बीएससी की एग्जाम दी समर में। और एक जैसे ही समर में एग्जाम्स दी, आप मधुबन आए और जो पहली ट्रेनिंग चली कन्याओं को राजयोगा टीचर बनाने की, वो पहली ट्रेनिंग आपने अटेंड की और राजयोगा टीचर के रूप में आप तैयार हुए। और बाबा ने, दादियों ने आपको सेवाओं के लिए विविध स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, अफ्रीका, नेपाल, मॉरिशस आदि आदि देश और विदेश के कई स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं दी। बाबा का नाम बाला किया, बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। और फिर 1976 में जब आप यहाँ आए, आते तो हर वर्ष रहे, लेकिन 1976 में जब आप यहाँ आए तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा था, और वो सुनहरा अवसर था मधुबन निवासी बनने का। दादियों ने आपके टैलेंट को, आपके स्किल को, आपके गुणों को देखते हुए, मधुबन की आवश्यकता थी कि एक टैलेंटेड, भाषाओं को जानने वाला एक राजयोगा टीचर हमारे पास मधुबन में होना चाहिए। तो दीदी को सुंदर ऑफर दिया और दीदी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। तो 76 से लेकर आज दिन तक इस मधुबन धरनी में रहकर आप देश विदेश में बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। करीब 75 से भी अधिक देशों का आपने भ्रमण करके बाबा का नाम बाला किया है, अनेक आत्माओं को बाबा से जोड़ा है, उनकी जीवन बनाई है। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और मधुबन में होने वाली भर्तियों के कोऑर्डिनेटर हैं। और जो हमारे विदेशी भाई बहनों के प्रोग्राम होते हैं, वो भी आप कोऑर्डिनेट करते हैं, और साथ साथ अंग्रेजी ट्रांसलेशन मेन इंटरप्रेटर हैं। बाप दादा से मिलन बनाने के लिए सभी लोग डायमंड हॉल में इकट्ठे होते हैं, और कई लोग प्रश्न करते हैं, दीदी आप हमें हॉल में दिखाई नहीं देते हो, आप बाबा मिलन नहीं करते हैं? लेकिन दीदी भी बाबा मिलन करते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन केबिन में बैठकर। बाबा की मुरली चल रही होती है हिंदी में और दीदी उसी समय उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, और उस ट्रांसलेशन को सुनकर फिर विविध भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है। और इस प्रकार से देश विदेश में जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा की मुरली को सुन पाते हैं। बाबा को दीदी ने बहुत सुंदर सुंदर वरदानों से सजाया है, जिसमें से एक दो का उल्लेख करूंगी। आपके जीवा पर विद्या की देवी सरस्वती सदा विराजमान रहेगी। और दूसरा वरदान है, आप हर की पौड़ी की गंगा है। गंगा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें हर की पौड़ी का अपना ही महत्व है। तो ऐसे सुंदर वरदानों से बाबा ने आपको सजाया है, न सिर्फ वरदानों से, लेकिन आपके जीवन में गुणों की त्रिवेणी भी सदा बहती रहती है। मधुरता, सरलता और सहनशीलता, ये तीनों गुणों की त्रिवेणी सरिता आपके जीवन से हर पल अनुभव होती रहती है। इतना ही नहीं, जो दादियों से, मम्मा से, बाबा से पालना लेकर बड़े हुए हैं, और अब जब सभी अव्यक्त हो गए हैं हमारे आदि रतन, तो वो दादियों वाली पालना का रिटर्न आप देते हैं। जो भी मधुबन में आता है वो अनुभव करते हैं कि हमने इन सीनियर से दादियों वाली पालना प्राप्त की। बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन दीदी सबसे ऐसे मिलती है, सबको अपनेपन का एहसास होता है। तो बहुत ही गुणों की धनी है, प्रतिभा की धनी है। आज हम दीदी से सुनेंगे भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य। लक्ष्य उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, लेकिन बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो इसने दीदी को आज विषय दिया है, दुआएं दो, दुआएं लो। तो इस विषय पर प्रकाश डालते हुए दीदी भट्टी के लक्ष्य को विस्तार से समझाएगी। तो अभी हम दीदी से सुने, उससे पहले आपका परिचय हम दीदी को देंगे। जो इस ज्ञान में 1 से 5 वर्ष के बाबा के बच्चे हैं, वे हाथ खड़ा करेंगे। 1 से 5 वर्ष के बच्चे, आपका स्वागत है बाबा के घर में। नीचे हाथ करेंगे। जो 5 से 10 वर्ष के बच्चे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जो 10 से 15 वर्ष के बच्चे हैं, बहुत मोस्ट वेलकम। जो 15 से 20 वर्ष के बच्चे हैं, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। और जो 20 वर्ष से ऊपर वाले हैं, वे भी हाथ खड़ा करें अपना। आपका भी बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है। और जो टीचर्स पहने हैं राजयोग टीचर, वे जरा हाथ खड़ा करेंगे। काफी है, टीचर्स पहने पीछे क्यों बैठी है? टीचर्स का स्थान सामने रहेगा।
हाँ, तो टीचर्स को यहाँ स्थान मिलना चाहिए ना,
सामने वाले स्थान, सामने वाला सोफा टीचर बहनों के लिए खाली रखेंगे। तो आप सभी का और हमारे शुक्ला दीदी जो आप सभी को तैयार करके लाए हैं यहाँ पर, उनका भी हम अभी आए तो नहीं है, लेकिन उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते। सारी टीचर बहनें मेहनत करके आप सभी को लेकर आई है। आप सभी का पुनः पुनः बाबा के इस वरदानी भूमि पर बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। अभी हम सुनते हैं दीदी से, दुआएं दो, दुआएं लो। आदरणीय दीदी,
परिचय दो।
इस शरीर का नाम है इंदिरा बहन, और 1987 में हमने ये ज्ञान लिया, और 1998 में बाबा की सेवाओं में जीवन समर्पित किया। आरंभ के वर्षों में, समर्पित जीवन के आरंभ के वर्ष में 5 वर्ष हम ज्ञान सरोवर अकेडमी में स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी, जहां पर बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया, मनोबल एवं मनसा सेवा नाम की जो पुस्तक है, इतनी मोटी जो लिटरेचर में सेल होती है, वो बुक कंपोज करने के निमित्त बनाया बाबा ने इस आत्मा को। तो 5 वर्ष तक वहां सेवाएं दी, और चूंकि हम नागपुर सब छोन को बिलोंग करते हैं तो बाबा ने वहां रहने का भी चांस दिया, और चूंकि हम इस पार्क से जुड़े हुए थे, मतलब रमेश भाई उषा बहन से जुड़े थे, तो उन्होंने गांव देवी सेवा केंद्र पर भी रहने का अवसर दिया। और चूंकि हमारी शुरुआत की सेवा का धरनी तो हेडक्वार्टर ही था, तो पुनः 2009 में पुनः हेडक्वार्टर में पहुंच गए, ज्ञान सरोवर के बदले पांडव भवन में, और शिलू बहन जी के पास में उनके ग्लोबल ऑफिस में उनकी जो सेवाएं हैं उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति। तो अभी सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सर्व दादियां, सर्व वरिष्ठ भाई बहनों की ओर से तथा हमारी ओर से भी मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप माँ की कर्म भूमि, ऐसे महान स्थान पर हरिनगर और उसके कनेक्शन में सेवा केंद्रों के भाई बहने आप पधारे हैं, तो इन सब की तरफ से आप सबका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने लिए ताली बजाओ जरूर, क्यों नहीं। मधुबन ऐसी धरनी है जो स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, जहां स्वयं भगवान ने ऐसे कर्म सिखाए जिसको देखकर, सुनकर, अनुभव कर इतनी आत्माओं ने अपना जीवन बनाया। और आप सभी वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने यह अवसर पाया है अभी और यहाँ बट्टी करने आए हैं। बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि मुझे शुक्ला दीदी बता रहे थे कि बहुत तैयार हो गए, बहुत तैयार हो गए। हमने कहा भाई इतने नहीं, थोड़े कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था चाहिए। और तो कुछ लोगों ने कम किया, फिर कोरोना से डर गए कहीं तो इसीलिए और कम हो गए। तो ऐसे ही कम हुए, फिर आए, फिर नहीं आए, और आखिरकार जो पहुंच गए, हम कहते हैं जो पहुंच गए वो सबसे भाग्यशाली है। बस तो जरूर, क्योंकि ऐसे तो होता ही है, किसको रिजर्वेशन नहीं मिलती, अगर मिली भी तो एन मौके पर कोई कारण बन गया, नहीं आ सके तो उनकी जगह दूसरे आ गए, जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था वो पहुंच गए, और जिनका पूरा प्रोग्राम पक्का था वो रह गए। हाँ, ऐसे भी होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहुंच गए वो बहुत बहुत भाग्यशाली। और अगले 3 दिन, पूरे 3 दिन, मंगल बुध गुरु वार, ये 3 दिन आप पूरा आप समय भट्टी में पकेंगे। भट्टी किस लिए होती है? भट्टी में पकते हैं ना, कई चीजें पकती है अग्नि में। अग्नि का काम क्या होता है? परिवर्तन करना। तो इस योग भट्टी में जो पकते हैं वो यहाँ से परिवर्तित होकर के जाते हैं, लेकिन इस परिवर्तन के लिए अच्छी तरह से पकना होगा। तो कैसे पकेंगे? पहले तो लक्ष्य हमारा बहुत अच्छी तरह बुद्धि में हो। आप सबको बैज मिला और बैज पर क्या लिखा है? योग तपस्या भट्टी संपन्नता की ओर। तो संपन्नता की ओर चलने के लिए यह तपस्या है। तो उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, बाबा ने हमको बहुत ऊंचा उद्देश्य दिया है, मनुष्य से देवता बनना है। ये तो उद्देश्य है, और उस देवता में भी लक्ष्मी नारायण का पद पाना है। लेकिन मनुष्य से देवता बनने के काल में, मध्य काल, उनके बीच में बहुत कदम है। देवता बनने के लिए पहले तो घर जाना होगा, परमधाम जाना होगा, और परमधाम जाने के लिए हमें संपन्न बनना होगा, संपूर्ण बनना होगा, और उसके लिए कई कदम हैं, कई छोटे छोटे लक्ष्य हैं जैसे बताया। तो अभी तो हम क्या कहेंगे, हम कौन हैं? ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा की मुख वंशावली, परमात्मा की पहली रचना। वैसे ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि पिता, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला जन्म और अंतिम जन्म 84वां, इसीलिए आदि पिता है वो। 84 पिताएं बीच में मिले हैं। लेकिन हम बच्चे इतने फखुर से, नशे से कहते हैं कि ब्रह्मा हमारा डायरेक्ट पिता है, हमने ब्रह्मा मुख से जन्म लिया है। ब्रह्मा मुख से जन्म लेकर हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं, और हम ब्राह्मण ही फरिश्ता बनेंगे, संपन्न और संपूर्ण बन करके, बाप समान बन करके, और फरिश्ता बनकर घर लौटेंगे बाप बाबा के साथ, और फिर नई दुनिया में आएंगे। तो बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन इस यात्रा में हम अपनी तैयारी कैसे करें, उसके लिए बाबा हम बच्चों को मुरलियों में बहुत युक्तियां बताते हैं। कल भी बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ कैसे करो, तो परसों थी मुरली, क्योंकि जब तक तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक हम संपन्न संपूर्ण कैसे बनेंगे। और समय कम है, मंजिल अभी दूर है, तो रफ्तार को तो बढ़ाना ही होगा, कदम तेज चलना ही होगा। इसलिए कई पूछते हैं, बहन जी हम तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने? तो बाबा तो भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं। तो जो बाबा की श्रीमत हमें मिलती है, उस श्रीमत पर अगर हम चलते रहें तो तीव्र पुरुषार्थी अवश्य बनेंगे। और हमारी लड़ाई माया से है, तो माया पर जीत पानी है, हम माया को अवश्य हराएंगे और विजयी रत्न बन करके, संपन्न संपूर्ण बन करके बाबा के साथ घर लौटेंगे, और फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाने आएंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, उसके लिए दुआएं बहुत जमा करनी होगी, क्योंकि हमारे ऊपर 63 जन्मों का पापों का बोझ है। एक जन्म का बोझ नहीं है, किसी पर एक जन्म का ही कर्जा होता है तो भी कितना बोझ लगता है कि मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, मैं कैसे चुकता करूंगा। तो उस कर्जे के बोझ के कारण कितना दुखी रहता है। और बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर तो 63 जन्मों का कर्जा है, क्योंकि एक जन्म के पाप की बात नहीं है, 63 जन्मों से हम कितना पाप करते आए हैं, विकारों के वश होकर आए हैं, और विकारों के वश जो भी कर्म किया वो सब पाप के खाते में गया। और विकारों का कारण क्या है? देह अभिमान। तो द्वापर युग से जैसे देह अभिमानी बने, एक एक विकार के वश होते गए, और परिणाम स्वरूप हम पाप आत्मा बन गए। तो पाप आत्मा बनकर हमने अपने ऊपर कितना बोझ चढ़ाया। अब उस बोझ को समाप्त करना है, और बाबा उसके लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? बच्चे मुझे याद करो, ये सबसे सहज उपाय है, ये प्यार का तरीका है, प्यार का रास्ता है उस बोझ को कम करने के लिए। और अगर इस प्यार के तरीके से बोझ कम नहीं किया तो बाबा कहते फिर सजा के बल से आपका बोझ खत्म करेंगे। तो दो ही तरीके हैं अपने पापों को खत्म करने के, एक है प्यार और दूसरा है मार, ऐसे ही कहेंगे, या तो योग बल या तो सजा बल, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो कौन सा तरीका अपनाएंगे, योग बल या सजा बल? योग बल। बहुत समय से हम इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाते आए हैं, पूरे 5000 साल हो गए। अब भगवान आए हैं और यही संदेश दे रहे हैं, बच्चे अभी घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है। हमारी दीदी, बड़ी दीदी की तो यही रट थी, दीदी के पास कई जाते थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में थी दीदी, यहाँ रहते थे मधुबन में, तो हमने अपनी आंखों से देखा दीदी जी को। और हमारी शुक्ला दीदी ने तो बहुत अनुभव किया है दीदी का। तो दीदी के पास जब जाते थे कोई समस्या लेकर, कोई ऐसी बात लेकर, कोई कुछ न कुछ तो होता ही रहता है संगठन में, तो दीदी सुनती तो बहुत प्यार से थी, लेकिन एक हल ये भी देती थी दीदी, कहती थी छोड़ो छोड़ो, अब घर चलना है, अब घर चलना है, छोड़ो, ऐसे दीदी करती थी, क्यों इस परपंच में पड़े हो, छोड़ो। तो दीदी का ये नारा इतना पक्का था, अब घर चलना है, अब घर चलना है। और उसके बाद ही ये जो गीत बजा ना, जब वो किस कोई अर्थी को लाते हैं, अब घर जाना है, अब घर चलना है, तो वो गीत बजते हैं, बजता है। तो अभी तो घर तो बहुत अभी नजदीक आ गया, तो सबके अंदर में यही रट लगनी चाहिए, अब घर जाना है। तो घर जाना है तो एक तो कोई और आगे पाप कर्म नहीं करना है, कुछ भी हो जाए किसी भी विकार के वश नहीं होना है, नहीं तो पाप का खाता बनेगा। और फिर बाबा ये भी सावधान भी देते हैं कि ब्राह्मण बन करके फिर कोई भी पाप किया तो 100 गुना सजा। हाँ, ब्राह्मण बनने से पहले कोई पाप कर्म करते थे तो चलो 1 गुना सजा, पर समझदारी से किया, समझदार हैं, पूरा ज्ञान है, और फिर भी कोई पाप कर्म करते हैं तो 100 गुना सजा। तो इसीलिए बाबा सावधान भी करते हैं। तो हमें इस सृष्टि मंच पर आए 5000 साल हो गए, अब घर चलना है, तो यहां से बिस्तरा बोरी उठाना है, जाना है, जाना है, जाना है। परंतु हम आत्माएं इतनी फंस गई है इस संसार में, जो भूली गई कि हमें जाना है। कई बार हम कहते जब इस सृष्टि पर आए जन्म लिया ये तो पता है कि रिटर्न टिकट तो लेकर ही आए हैं। कोई भी अविनाशी अनादि तो नहीं है इस सृष्टि मंच पर। जिसने शरीर धारण किया है उसको एक दिन जाना ही है, मरना ही है। ये तो हो नहीं सकता है कि शरीर में अमर हो जाए वो, कोई भी नहीं हुआ। तो इसीलिए जबकि जाना ही है और अभी समय भी इतना नजदीक है, तो सबसे पहली बात तो कोई भी आगे पाप कर्म नहीं करना है, किसी भी विकार के वश नहीं होना है। तो आगे का तो बनाना ही नहीं है, लेकिन और इनसे महत्व की बात है जो इतना 63 जन्मों का हिसाब किताब है उसको भी चुकतू करना है। तो आप पिछला चुकतू करना है, आगे कुछ बनाना नहीं है, परंतु उसके लिए कुछ छोड़ना भी नहीं है। ऐसे नहीं छोड़ के बाबा कहते जंगल चले जाओ, वो भी नहीं करना है। घर गृहस्थ में रहना है, परिवार में रहना है, क्योंकि हिसाब किताब तो है ना परिवार वालों के साथ। कई जन्मों का हिसाब किताब होगा और अभी चुकतू करना है, इसलिए छोड़ना भी कुछ नहीं है, नया कुछ जोड़ना भी नहीं है, और फंसना तो है ही नहीं तो न फंसना है, न छोड़ना है, न नया जोड़ना है। परंतु क्या करना है, अगर हिसाब किताब चुकतू करनी है तो निभाना है, निभाना भी है बिना फंसे। ये एक बहुत बड़ी कला है। कैसे निभाएं? न्यारा होकर के निभाएं, प्यारा होकर के निभाएं, या दोनों का सुंदर बैलेंस रख करके निभाएं, ये हमारे ऊपर है। तो केवल न्यारा होकर निभाएंगे तो भी जो बाबा की श्रीमत है कि बच्चे परिवार को संभालना भी है, जिम्मेदारियां जो है वो भी निभानी है, तो हम न्यारा होके छोड़ तो सकते नहीं है। हम सन्यासी नहीं है उस रूप से जो छोड़ दें, हमारा ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो इसीलिए छोड़ना भी नहीं है, पर न्यारे के साथ प्यारा होकर चलना है। पर कब न्यारा बनना है, कब प्यारा बनना है, इसके लिए बाबा कहते हैं परख शक्ति और निर्णय शक्ति चाहिए। और वो परख शक्ति निर्णय शक्ति बाबा की याद से ही आती है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं जबकि समय इतना कम है, उस कम समय में समय को सफल करना, उसका सदुपयोग करना, उससे प्राप्ति करना, ये एक बहुत बड़ी कला है। एक सेकंड बाबा कहते हैं संगम का कितना कीमती है। तो पापों से भी बचना है, व्यर्थ संकल्पों से भी बचना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी हमारा बहुत समय ले लेते हैं। हर वक्त श्रेष्ठ संकल्प चले, शुद्ध संकल्प चले, शुभ संकल्प चले, समर्थ संकल्प चले, इसका लक्ष्य रखना है। और उस दिन जैसे बाबा की मुरली चली थी, वो समर्थि कब आएगी? जब स्मृति होगी। बिना स्मृति के समर्थि नहीं आएगी, क्योंकि अब तक तो यही स्मृति थी, भक्ति मार्ग की स्मृति क्या है? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, दास हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, निर्बल हूँ, है ना, दास हूँ। न जाने कितने हीन शब्द हम अपने लिए यूज करते थे, और बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, बच्चे तुम कौन हो। तो भक्ति मार्ग की जो भी बातें हैं अवश्य हम उनको उनके ऊपर उठते हैं। और क्या स्मृति दिलाई? कि तुम विजयी रतन हो। हर मुरली में बाबा हमें जो स्लोगन देते हैं या जो टाइटल देते हैं, ये वो स्मृति के सूचक है। एक स्मृति भी अगर दिन भर में बुद्धि में रखी तो उसकी शक्ति हम आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्मृति से समर्थी आती है, और वो स्मृति जैसे ही आई तो जो हमारी भक्ति मार्ग में जो हमारी स्थिति थी, इतनी हीनता की भावना अपने प्रति थी, वो खत्म हो जाती। आज भी बाबा की मुरली चली, भगवान से रहम मांगते। क्या क्या मांगते आए थे भक्ति मार्ग में? रहम करो, कृपा करो, शक्ति दो, ये करो, ये करो, ये करो, या तो ये दो या तो ये करो, भगवान से मांगते थे। भगवान हाँ, बच्चा दो, धन दो, नौकरी दो, मकान दो, न जाने क्या क्या मांगते थे भगवान से। चलो वो नहीं तो शांति दो, शक्ति दो, दया करो, रहम करो। चलो वो न सही, फिर तीसरी चीज माफ करो, क्षमा करो। तो ये करते थे, तो मांगना ही था। अब भगवान ने आकर के हमारा मांगना बंद कर दिया, और क्या कहा, मांगने से तो मरना भला। कितना ये नशा है। भगवान से हम क्यों मांगे, वो तो दाता बन के हमें दे रहा है। इसलिए मांगना तो बंद हो ही गया, और वो दाता से हम अधिकार से ले रहे हैं। कोई कमी नहीं बाबा ने रखी है, जिसके कारण हम महसूस कर रहे हैं हम इतने अंदर में संतुष्ट हैं, भरपूर हैं। दुनिया में तो अंदर खाली खाली है। कई बार हम कहते हैं ना कि अंदर झांको, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं आपको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। अच्छा चलो अंदर जाओ, तो किसके अंदर जाओ, तो पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा के अंदर जाना होता है, तो शरीर के अंदर जाने की तो बात ही नहीं है, तो अंदर कैसे जाएं? अब हमें पता चला अंदर कैसे जाना होता है, आत्मिक स्थिति द्वारा, और महसूस करते कि वो तो मेरे पास ही है, मुझे कहीं से मांगनी तो है नहीं। तो जब मांगनी नहीं है, मेरे पास है, तो हम क्यों मांगे, तो मेरा ही अधिकार है। तो ये जब बुद्धि में आता है तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है। बाबा ने कहा ना, स्मृति बदलने से वृत्ति बदल गई, दृष्टि बदल गई, कृति बदल गई, तो ऑटोमेटिकली सारी सृष्टि बदल गई हमारे लिए। तो वो जब हमारी स्थिति बनती है तो ऑटोमेटिकली सारा जीवन ही बदल जाता है, और जब जीवन बदल जाता है तो हर बात में दृष्टिकोण हमारा पूरा बदल जाता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा लक्ष्य देते हैं, पर हम अभी तक कहाँ तक खड़े उतरे उस लक्ष्य मुताबिक वो अपने आप को देखें। तो उसके लिए आज का जो विषय है, दुआएं दो और दुआएं लो। हमारी बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि, सदा कहती थी, दादी से पूछते थे, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो? क्योंकि कई कहते ना बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। बाबा भी कहते मेहनत है, माया पछाड़ती है, मेहनत है, याद करने नहीं देती है। पर दादी जी से जब हम पूछते, दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, दादी कहती थी मैं तो दुआओं से चलती हूँ, बस सबकी दुआओं से चलती हूँ। तो सबकी दुआओं से चलती हूँ माना कोई मेहनत नहीं, मेहनत तो अपने पुरुषार्थ से होती है, और दुआओं से चलना माना बिना मेहनत, क्योंकि मोहब्बत से चलते हैं तो प्रभु प्रिय भी हो गए, लोकप्रिय भी हो गए, और स्वप्रिय भी हो गए। सबकी दुआएं दादी को मिलती थी, और दादी जी सबको दुआएं देती थी, जो अनुभव हमने किया। पर किसको कहते हैं दुआएं देना, दुआएं लेना? एक तो है कि भाई किसी से बददुआ ना मिले। एक होता है ना जो बाबा कई बार कहते हैं, भाई किसी को दुख मत दो। तो दुख मत दो और दुख मत लो, तो न दुख दो न दुख लो। पर दूसरा होता है सुख दो और सुख लो। तो लक्ष्य ये नहीं है कि दुख नहीं देना है, पर लक्ष्य है कि सुख देना है। इसलिए उसमें भले दो आप देते जाओ। उस दिन भी दो तारीख थी ना, तो दो 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 दो, पांच बार दो आया था, दो तारीख, दो महीना और 2022, तो पांच बार दो दो शब्द आया। तो इसीलिए देना है, देना है, तो देना है, सुख देना है, तो सुख देना है तो सुख अपने आप मिलेगा। न हम सुख मांगते हैं, न हम दुख देते हैं, तो ये दोनों बातें नहीं हैं, क्योंकि जो देंगे वही मिलेगा। ये कर्म फिलॉसॉफी है ना, जानते हैं ना इस कर्म फिलॉसॉफी को। तो अगर सुख देंगे तो सुख मिलेगा, तुम एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से मिले। त्याग से भाग्य बनता है ना। कई लोग आते हैं, शिविर में भी आते रहे, तो हम लोगों को कहते थे, बाबा ने भी उस दिन मुरली में कहा, लोग कहते हैं आप लोगों का बहुत त्याग है, बहुत त्याग है। तो हम कहते हैं क्या त्याग है, सफेद कपड़े पहने ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको चार साड़ी भी होगी तो भी परेशान नहीं होंगे, चार साड़ी है। लोगों को कितनी, यहाँ माताओं को कितनी साड़ी चाहिए, और हम चार साड़ी कल वाली आज पहन ली, मान लो किसको क्या पता चलेगा। लेकिन अगर रंगीन कपड़ों वाले वही कपड़ा दूसरे दिन पहना तो कहेंगे ये क्या आपने, हाँ आपको बस एक ही है क्या आपकी ड्रेस, क्योंकि पता है कल भी यही पहनी थी। तो इसीलिए रोज बदलना पड़ता है। कई लोग तो सारे दिन में कितना बदलते रहते हैं। और बाबा ने तो हमें सिखाया है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और दूसरा सफेद में तो कितना सुख है, कितनी पवित्रता है, एंजल्स लगते हैं। तो मुझे याद आया जब बाबा की मुरली उस दिन सुनी कि लोग कहेंगे ये तो फरिश्ता है, तो सचमुच हम अमेरिका गए थे, वॉशिंगटन गए थे, तो वॉशिंगटन में वहाँ पर अपना बहुत बढ़िया बहुत सुंदर सेंटर है बाबा का। तो हम बहने वहाँ तो सफ़ेद साड़ी में टहल रहे थे, सवेरे मॉर्निंग वॉक करने गए थे, तो उस समय वहाँ बगीचे में बुजुर्ग लोग बहुत घूम रहे थे, अमेरिका में बुजुर्ग आते थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो हम जैसे बिल्कुल साइलेंस में बाबा की याद में बगीचे में टहल रहे थे, तो एक बुजुर्ग युगल वो बेंच पर बैठे थे और वो हम लोगों को ताक रहे थे, जैसे देख रहे थे। और एक ने दूसरे को कहा, लुक एट दीज एंजल्स, दे आर सो ब्यूटिफुल, ये एंजल्स को देखो ये कितने सुंदर हैं। तो देखो हमने उसी समय वो याद किया, ये हमको एंजल्स के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी दुनिया में एंजल्स को बहुत मानते हैं। वहाँ तो हर बिल्डिंग में, यूरोप में आप जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, वहाँ बिल्डिंग्स के ऊपर एंजल्स दिखाते हैं, फरिश्ते पर ये पंखों वाले, तो एंजल्स को बहुत मानते हैं। तो इसीलिए लुक एट दीज एंजल्स। तो बाबा ने भी उस दिन कहा कि सफेद वस्त्रों में जैसे फरिश्ते लगते हैं, परियां लगते हैं, और फरिश्ते जो दिखाते हैं ना हमेशा सफेद वस्त्रों में दिखाते हैं, रंगीन कपड़ों में नहीं दिखाते हैं, सफेद पंख तो दिखाते हैं लेकिन सफेद। और वहां पर बड़े बड़े पोस्टर्स भी है कई देशों में हमने देखे। तो कहने का भाव है तो हमने क्या त्याग किया, वस्त्रों का त्याग किया, खान पान का त्याग किया। और बाबा कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, हाँ कैसे खाओ क्या खाओ, आपको अभी सचिन डॉक्टर कल क्लास कराएंगे तो खूब आपको कहेंगे बहुत उनके उसी पर क्लासेस होती है, तो इसीलिए डॉक्टर्स खुद ही कहते हैं। और चलो भोजन का त्याग किया, बाहर का नहीं खाते, और क्या त्याग किया, गहने त्याग किए, जेवर त्याग किए। तो वो गहने किस काम के, वहाँ कान में वो डालते हैं, इतना मोटा मोटा डालते हैं जो कान ही सारे छेद हो जाता है, इतने कान ही ऐसे वो छेद वाले हो जाते हैं। तो वो किस काम का सोना जो कान काटे। इसलिए बाबा कहते हैं वो त्याग तो सुखदाई है। तो कई कहते हैं बहुत त्याग है, और कई आकर के ये भी कहते हैं आप लोगों का क्या बड़ा भाग्य है, आप कितने ऊंचे स्थान पर रहते हो, आप कितनी ऊंची सेवा करते हो, आप लोग हाँ आप लोग तो सचमुच खुदाई बंदे हो, न जाने इतनी ऊंची ऊंची महिमा करते हैं, आपका बहुत भाग्य है। तो हम कई बार सोचते हैं भाग्य है या त्याग है, क्या है? लेकिन हाँ, कोई कहेगा त्याग है, कोई कहेगा भाग्य है, लेकिन ये भाग्य का आधार क्या है? आधार है त्याग। जब तक त्याग नहीं है तब तक भाग्य नहीं है। जब तक त्याग नहीं है तब तक दुआएं भी नहीं मिलेगी। मुझे मुझे मेरा 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 अगर कहा तो त्याग कहाँ है, मेरा मेरा कहा तो दुआएं कहाँ है? दुआएं तो तब मिले जब हाँ अच्छा सहयोगी बनते हैं, समय का त्याग, अपनी अपनी कलाओं का भी त्याग, मानो मदद करते हैं, सेवा में मददगार बनते हैं, तो त्याग तो है ना। समय स्वास संकल्प शक्ति सेवा में लगाते हैं तो ये भी तो त्याग है, नहीं तो दुनिया में तो अपना समय स्वास संकल्प शक्ति किसमें लगाते हैं? खाओ पियो मौज करो नाच गाना तमाशा शराब जुआ न जाने क्या क्या करते रहते हैं, तो उसमें समय संपत्ति संकल्प शक्ति सारी व्यर्थ चली जाती है, जीवन ही बर्बाद हो जाता है। और अभी अगर हम शरीर छोड़ें तो हम खुशी खुशी छोड़ेंगे कि हमने अपने जीवन में बहुत दुआएं पाई है। ये तो नहीं कि मैं तो हाथ खाली जा रहा हूँ, दुनिया में तो जाएंगे तो हाथ खाली जाएंगे, क्योंकि कुछ भी आत्मिक आध्यात्मिक कमाई तो की नहीं, और बाकी जो कमाई की वो तो यहीं रह जाएगी। लेकिन अगर हम जाएंगे तो खुशी खुशी जाएंगे। बीबी जब किसी के डेड बॉडी के आगे हम आते हैं और उस आत्मा के प्रति कुछ संबोधन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आत्मा बहुत पुण्य कमा के गई, बहुत पुण्य कमा के गई, अनेकों की दुआएं प्राप्त की, और ये आत्मा जहां भी जाएगी उसी पुण्य से उनका बहुत ऊंचा जन्म होगा। लेकिन जिसने कोई दुआएं कमाई नहीं, बददुआएं ही ली, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? अच्छा हुआ गया, जान बची। माना कोई अगर नहीं मरता है मान लो, और उसका संस्कार भी अच्छा नहीं है, तो लोग कहते हैं अरे देखो न मरता है न मंजा छोड़ता है। मरता भी नहीं है और मंजा भी नहीं छोड़ता है, तो माना बद्दुआ ही निकलती है। और बाबा के बच्चों के लिए तो कोई बद्दुआई नहीं निकलेगी। पर ये दुआएं देना और दुआएं लेना, उसके लिए हर वक्त बुद्धि में त्याग की भावना जरूर चाहिए। बाबा कहते तुम्हारा त्याग त्याग है ही नहीं, हर कदम पर भाग्य है। तो जब भाग्य है प्राप्ति है तो हम त्याग के पलड़े को क्यों भारी करते हैं? त्याग का पलड़ा तब भारी लगता है जब हम को लगता है मैं अपना दे रहा हूं, हम अपना क्या दे रहे हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा मेरा को चेंज करके क्या करो, तेरा तेरा करो। गुरु नानक के लिए कहते ना जब तेरा आया तो क्या किया, तेरा 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 मैं हो गया तेरा बस। तो जब ये तेरा की भावना आएगी तो सचमुच हम दुआएं देने के सच्चे पात्र बन जाएंगे। आज बाबा ने वरदान में क्या कहा, दुआएं ये रॉकेट का काम करेगी। रॉकेट क्या करता है, सीधा ऊपर जाता है, कितने फोर्स से ऊपर जाता है, चाहे कोई भी विघ्न आए वो विघ्न उसके बीच में विघ्न नहीं बनता है, सीधा ऊपर की तरफ जाता है। तो ये दुआएं रॉकेट का काम कैसे करती है, जैसे ही हमने किसी की भी सेवा की, हाल पहले तो वो सेवा सेवा नहीं है, ये भाग्य है ये समझ करके हम करते हैं, कुछ चाहिए इनसे ये संकल्प नहीं है, क्योंकि सेवा माना सेवा, सेवा माना कुछ चाहिए नहीं, अगर चाहिए है तो स्वार्थ है, वो सेवा नहीं है। या तो स्वार्थ है या तो सेवा है, दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। अगर बुद्धि में स्वार्थ है तो सेवा नहीं है, यह समझ लेना है। तो इसीलिए मुझे चाहिए कुछ रिटर्न में, ये तो कभी सोचना ही नहीं। इसलिए जब बुद्धि में आता है मुझे देना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि इतनी हल्की हो जाती है, और जो मैं दे रहा हूं वो मेरा नहीं है, वो बाबा का दिया हुआ है, मैं तो निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं, तो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और हमारा बोझ भी कम होता जाता है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, मैं के बजाय मैं कहो, मैं कहने की आदत तो पड़ी हुई है पर क्या कहो, मैं आत्मा, क्योंकि मैं आत्मा हूं ये समझा तो दुआएं दे सकेंगे। मैं शरीर हूं तो शरीर को तो बहुत कुछ चाहिए, शरीर की तो बहुत आवश्यकताएं हैं, न जाने कितनी आवश्यकताएं हैं शरीर की, भले आवश्यकता कोई कई नहीं भी है, मानते हैं बहुत क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन इच्छाएं तो अनगिनत है। तो जैसे हम अपने को देह समझते हैं तो अनगिनत इच्छाएं उत्पन्न होती है, इसलिए बाबा ने पहले से इस बात को काट दिया कि तुम देह हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। और यही आत्मा का पाठ पहला पाठ भी है और अंतिम पाठ भी होगा। अंतिम पाठ कैसा होगा, अंतिम पेपर जो उस दिन बाबा ने कहा, अंतिम पेपर का एक ही प्रश्न होगा और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाँ ना में जवाब, बस हाँ या ना, और वो एक ही प्रश्न होगा कि अंत के समय हमारी स्थिति कैसी थी, अशरीरी स्थिति थी, देही अभिमानी स्थिति थी, या किसी में मोह फंसा हुआ था, किसी देहधारी की याद थी। इसलिए बाबा ने क्या कहा, अंतिम पेपर कौन सा होगा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, यही गीता का सार है। तो जब ये हमको बुद्धि में आ जाता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, तो मैं इस शरीर के भान से हम परे हो जाते हैं। इसलिए मैं आत्मा, और जहां मेरा 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 है तो वहां मेरा बाबा, क्योंकि ये मैं और मेरा, बाबा कहते हैं यही पाप के द्वार है, पाप के द्वार हैं। कोई कहे ना हमको कैसे पता चले कि ये मैं पाप कर रहा हूं या पुण्य कर रहा हूं, कैसे पता चले, क्या कसौटी है, तो क्या उसके लिए मापदंड है पाप है या पुण्य है। क्योंकि कई समझते ना कि पाप या पुण्य ये तुरंत पता नहीं चलता है, किसी के लिए वही कर्म पाप होगा, किसके लिए वही कर्म पुण्य होगा, होगा ना, वह है, ऐसे नहीं कि नहीं है, क्योंकि कई ऐसे प्रसंग आते हैं। परंतु जो सही कसौटी है वहां है मैं और मेरा, मैं और मेरा, जहां अभिमान वश मैं आया वो पाप के खाते में जाएगा, जहां मोह वश मेरा आया वो भी पाप के खाते में जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं आत्मा मेरा बाबा, तो बाबा को बीच में लाया तो पाप का खाता नहीं बनेगा, क्योंकि ये मेरा नहीं है बाबा का है, और हम ट्रस्टी हो गए। नहीं तो मेरा है ना, मैं जो चाहूं सो करूं, कहते ना कई युवकों को हम देखते हैं। एक बार एक युवक था, मैंने उसको देखा, इतना सिगरेट पी रहा था, इतना सिगरेट पी रहा था, शराब मतलब बहुत कुछ। तो मैंने कहा भाई आप इतना सिगरेट पी रहे हो, ये सब कर रहे हो, क्यों अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो जवाब क्या देता, मैं कमाता हूं ना, इसमें क्या है, मैं कमाता हूं, मैं किसे मांगता थोड़ी हूं, तो मैं कमाता हूं तो मैं जो चाहूं सो करूं, इस धन से मेरा है, धन है, मैं कमाता हूं। हाँ मैं मांग करके करता हूं तो फिर नहीं है, इसलिए समझते मैं कमाता हूं, लेकिन मेरे पास भी जो है वो मेरा नहीं है, ये बाबा का है। ये अगर बुद्धि में होगा तो मैं कमाता हूं तो मैं जो चाहूं सो करूं, करेंगे क्या? मेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते कैसे दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। एक एक पहला कदम दुआ देने का है, ये मेरा नहीं है। और जहां स्वार्थ नहीं है, सेवा है, वो दुआ का काम करेगा। और जैसे दुआएं देते हैं तो दुआएं अपने आप मिलेगी, दुआएं मांगी नहीं जाती है। कई तो मांगते हैं, भाई मेरे को दुआ करो। बाबा कहते हैं दुआएं मांगी नहीं जाती है। कई कहते भाई आशीर्वाद करो, बाबा कहते आशीर्वाद अपने ऊपर करो। आशीर्वाद आप खुद ही अपने ऊपर करो, मांगो नहीं। भक्ति मार्ग में मांगते हैं, कई आके खड़े हो जाते हैं, अपना सिर नीचे करके कहते हैं बहन जी बस आशीर्वाद करो। सिर पर हाथ रखो, आशीर्वाद करो। तो बाबा कहते हैं आशीर्वाद आप खुद अपने ऊपर करो। कई यहां तक पूछते हैं ये तीन शब्द हैं, दुआ किसको कहेंगे, आशीर्वाद किसको कहेंगे और वरदान किसको कहेंगे। ये तीनों अलग अलग हैं। हाँ, तीनों एक नहीं है। इंग्लिश में तो तीनों का एक ही अर्थ निकलता है, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग में दुआएं भी आ जाती है तो आशीर्वाद भी आ जाती है तो वरदान भी आ जाता है। लेकिन हिंदी में तीनों का अलग अलग अर्थ है। दुआएं अर्थात दुआएं तो कोई भी दे सकता है। आपने उसको थोड़ा भी सुख दिया, वो आपको दुआ करेगा, जीते रहो बेटा, जीते रहो, हाँ जीते रहो। तो ये भी जैसे दुआ किया। तो दुआएं तो छोटे बड़े दे सकते हैं। किसी को कुछ भी एक प्रकार का सहयोग दिया, वो आपको दुआ देगा, परंतु उसके लिए सहयोग देना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी पड़ेगी, तब दुआ मिलेगी। तो दुआ कौन कर सकता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वो उसको दुआएं मिलेगी। और वो निस्वार्थ भाव से प्यार प्रेम से प्राप्ति की वो दुआएं देगा। पर दुआएं देने के लिए एक एक अंग इतना शीतल भी चाहिए, नहीं तो बद्दुआ हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते एक एक अंग को शीतल बनाओ, मुख से कोई भी ऐसा कटु वचन न निकले। अगर कटु वचन निकला तो दुआएं कैसे देंगे। दुआएं देना माना कितने शुद्ध शब्द यूज करने होते हैं। तो हमारे बोल कैसे हो, हमारी दृष्टि कैसी हो, हमारा एक एक अंग शीतल हो, तभी हम दुआएं दे सकते हैं। और जब एक एक अंग शीतल होगा, हम दुआएं देंगे तो दुआएं अपने आप हमें मिलेगी। इसलिए दुआएं मांगी नहीं जाती है, दुआएं दी जाती है। जब दिल को सुकून मिलता है, कुछ अंदर में प्राप्ति होती है, तो दिल से दुआएं निकलती है। और जिसका अंग शीतल है वो दुआएं दूसरों को दे सकता है और उनको दुआएं मिलेगी। तो दुआएं तो कोई भी दे सकता है, पर आशीर्वाद तो वैसे बड़ों से लेते हैं, छोटे बच्चे से थोड़ी आशीर्वाद लेंगे। दुआ तो बच्चे से भी ले सकते हैं, पर आशीर्वाद तो बड़ों से लेते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अनुभव किया है उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। तो आशीर्वाद वैसे भक्ति मार्ग का शब्द है। हम बाबा के बच्चे इतना आशीर्वाद शब्द नहीं कहेंगे, दुआएं कहते हैं। पर वरदान कौन दे सकता है, परमात्मा दे सकता है। और जो भरपूर है वो दे सकता है, जो भरपूर है, जो सदा अपने अंदर संतुष्ट है, वही वरदान दे सकता है। परमात्मा तो देता ही है, शिव बाबा का तो एक एक शब्द वरदान है, लेकिन भगवान के बच्चे भी वरदान दे सकते हैं। देवियों का हाथ कैसे दिखाते हैं, वरदानी हाथ। पर वो वरदानी हाथ बनने के लिए कितना शीतल चाहिए ये हाथ। अब ये हाथ किसको वरदान भी दे सकता है और ये हाथ किसी को थप्पड़ भी मार सकता है। तो थप्पड़ मारेंगे तो वो आपको दुआ देगा क्या? वो आपको बद्दुआ ही देगा। आपने एक थप्पड़ मारा वो आपको दो मारेगा, फिर आप चार मारोगे तो आठ मारेगा, फिर क्या होगा, कहां पहुंचेगा ये झगड़ा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा अंग शीतल होना चाहिए। कोई क्रोध कर रहा है निकल हट जाओ वहां से, तुम क्रोध मत करो। वो जो कर रहा है उसका अपना कर्म बना रहा है, तुम पाप कर्म मत करो, क्रोध मत करो। तो आंखें भी शीतल हो, मुख भी शीतल हो, लोभ लालच न हो। खाऊं खाऊं खाऊं, बाबा कहते खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। कीड़े पड़ते हैं ना पेट में, कीड़े होते हैं तो क्या होता है, बहुत भूख लगती है, वो कीड़े ही खा जाते हैं। तो इसीलिए खास करके वो कीड़ों की दवाई देते हैं ताकि कीड़े निकले, नहीं तो सारा दिन बस खाऊं 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 यही बुद्धि में रहता है। तो बाबा कहते हैं ये एक एक आपकी इंद्री शीतल होनी चाहिए, तब आपको दुआएं मिलेगी, तब आप आशीर्वाद दे सकेंगे, तब आप वरदानी मूरत बन सकेंगे। ये दृष्टि भी इतनी शीतल हो, है तो ये आंखें, वैसे भी देखो आंखें, आंखों के लिए क्या कहते हैं, ये आंखें अगर किसी गुरु की यानी दृष्टि गुरु की मुझ पर पड़ जाए तो क्या कहते हैं, हाँ, गुरु की नजर पड़ी और मैं निहाल हो गया, गुरु की दृष्टि पड़ी मैं निहाल हो गई। तो किसकी दृष्टि पड़ती है तो निहाल हो जाते हैं, और किसकी दृष्टि पड़ी तो उसको बद्दुआ देते हैं, है ना ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आंखें तो वही है, आंखों का तो काम ही देखना है, आंखें बंद तो नहीं करनी है, ये आंखें हैं तो जहान है। परंतु यही आंखें हैं जो किसको दुआ दे सकते हैं, किसी को दृष्टि दे करके उनको साक्षात्कार करा सकते हैं, और यही आंखें हैं जो बद्दुआ प्राप्त करने के कारण बन जाती है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को सदा यही कहते हैं, बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो, हर कर्म दुआओं से भरा हुआ। कभी भी मुख से कोई कुवचन न निकले, कोई कमेंट न निकले, कोई क्रिटिसिज्म न निकले, सदा ही सुखदायी शब्द निकले, तो हम अपने पाप कर्मों से बच जाएंगे और कमाई करते रहेंगे और शुभ भावना शुभ कामना से आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।